Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और प्रस्तुत हैं 5 अक्टूबर 2025 के मुख्य समाचार। ऑस्ट्रेलिया की विपक्ष संचार मंत्री मेलिसा मैकिंटोश ने कोलिशन के तथाकथित चार्टर पत्रों के उपयोग का बचाव किया है और इसे संगठनात्मक प्रथा का सामान्य हिस्सा बताया है। विपक्ष की नेता सुजन ली द्वारा जारी किए गए ये पत्र प्रत्येक छाया मंत्री यानी शैडो मिनिस्टर से अपेक्षित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों और नीतिगत लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं, जिससे उनकी जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं तय होती हैं। मैकिंटोश ने स्काई न्यूज को बताया कि यह प्रक्रिया फ्रंट बेंच के भीतर तनाव पैदा करने की आलोचना के बाद स्पष्टता लाती है। छात्र ऋण यानी स्टूडेंट डेट वाले करीब 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियाइयों के लिए उनका बकाया जल्द ही घट जाएगा, क्योंकि टैक्स ऑफिस 20% की कटौती लागू करने की तैयारी कर रहा है। ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस नवंबर के मध्य से यह राहत लागू करेगा और अनुमान है कि दिसंबर तक छात्र ऋण वाले आधे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर का कहना है कि लगभग बाकी सभी लोगों पर भी यह कटौती क्रिसमस से पहले लागू हो जाएगी। विक्टोरिया के एक सुदूर एल्पाइन क्षेत्र में एक झोपड़ी के पास 2 महिलाओं के शव बरामद किए गए हैं और पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि दोनों की 2 या 3 दिन पहले से मृत्यु हो चुकी हो। नेल्स में घूमने निकले 2 हाइकर्स को शुक्रवार दोपहर लगभग 12:50 पर क्लेव कोल हट के पास महिलाओं के शव मिले। विक्टोरिया पुलिस का कहना है कि पिछले कई दिनों से बर्फीले तूफान की स्थिति के बीच गंभीर हाइपोथर्मिया के कारण उनकी मृत्यु हुई होगी, जब तापमान -2.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और हवाएं 83 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चली। महिलाओं की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है, क्योंकि वर्तमान में लापता व्यक्ति की कोई रिपोर्ट नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते यौन स्वास्थ्य संकट को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, जिसमें शर्म, कलंक और पुरानी मानसिकता को यौन संचारित संक्रमणों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पिछले दशक में एसटीआई मामलों में 46% की वृद्धि हुई है और क्लैमाइडिया तथा गोनोरिया जैसे अनुपचारित मामलों के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई हैं। 2023 में क्लैमाइडिया के लगभग 1,10,000 मामले दर्ज किए गए, जिनमें लगभग 70% महिलाएं थी। गोनोरिया दूसरा सबसे आम संक्रमण था, जिसमें 40,000 से अधिक मामले सामने आए और इनमें से आधे लोग 15 से 29 वर्ष की आयु के थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश हिस्सों में आज यानी रविवार से डे लाइट सेविंग टाइम शुरू हो गया है और आज सुबह 2 बजे घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया गया। इस बदलाव का मतलब है कि जैसे जैसे देश गर्म महीनों की ओर बढ़ रहा है, शामें लंबी और दोपहरें अधिक रोशन होंगी। यह बदलाव न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, टैस्मेनिया और एसीटी में लागू हुआ, जबकि क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अभी भी ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड टाइम पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास द्वारा बंधकों को मुक्त कराने के लिए तैयार होने की घोषणा के बाद इसराइल से एनक्लेव पर बमबारी बंद करने की अपील की। उसके बावजूद शनिवार को गाजा पर इसराइल के हमलों में कम से कम 36 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ये लोग तबाह हुए फिलिस्तीनी इलाके में बमबारी और हवाई हमलों में मारे गए, जब ट्रंप ने शुक्रवार देर रात इसराइल से हमले रोकने को कहा था। इसी बीच सेंट्रल गाजा में फिलिस्तीनी नागरिक युद्ध विराम की उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं इजिप्ट में अमेरिकी शांति योजना पर हमास के साथ जारी अप्रत्यक्ष बातचीत के चलते इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे आने वाले दिनों में गाजा के सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा करेंगे। एक संक्षिप्त बयान में उन्होंने कहा कि तकनीकी विवरणों को अंतिम रूप देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल कायरो भेजा गया था, जिसका उद्देश्य कुछ दिनों के भीतर बातचीत को समाप्त करना था। रुक करें भारत की खबरों का, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई के संकेत चल रहे मानवीय और कूटनीतिक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की पुष्टि की कि भारत क्षेत्र में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति में योगदान देने वाली सभी पहलों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। आज के लिए मुख्य समाचारों में बस इतना ही। अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi या फिर SBS हिंदी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के जरिए। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।